शाम का समय था। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद आखिर उन्हें प्रेमचंद का घर मिल ही गया। उनका नाम चंद्रहासन था और प्रेमचंद से मिलने केरल से काशी आए थे। बाहर थोड़ी देर ठहर कर खाखूं करने पर भी जब कोई दिखाई नहीं पड़ा तो वे दरवाजे पर आए और झांक कर भीतर कमरे में देखा। एक आदमी जिसका चेहरा बड़ी बड़ी मूछों में खोया हुआ था फर्श पर बैठकर तन्मय भाव से कुछ लिख रहा था। चंद्रहासन ने सोचा ये शायद प्रेमचंद जी का लिपिक होगा। आगे बढ़कर उन्होंने कहा, मैं प्रेमचंद जी से मिलना चाहता हूं। उस आदमी ने नजर उठाकर आगंतुक की ओर देखा, कलम रख दी और ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, तो खड़े खड़े मिलेंगे क्या, बैठिए और मिलिए। उर्दू के एक नौजवान कवि नाशाद पहली बार प्रेमचंद से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचे। उन्हें जगह का पता तो था ही पर मकान का ठीक ठाक पता ना था, अतः उन्होंने सड़क पर चलते एक आदमी से जो बस एक मटमैली सी धोती और बनियान पहने था पूछा, आप बतला सकते हैं मुंशी प्रेमचंद कहाँ रहते हैं? उस आदमी ने कहा, जरूर, बहुत खुशी से। फिर वो आगे आगे चला और नाशाद उसके पीछे पीछे चले। जरा देर में घर आ गया। दोनों सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचे पहली मंजिल पर एक बहुत ही खाली खाली कमरे में। वहां उस आदमी ने नाशाद को थोड़ी देर बैठने के लिए कहा और अंदर चला गया। फिर तुरत फुरत कुर्ता पहनकर बाहर आया और हंसकर बोला, लीजिए अब आप प्रेमचंद से बात कर रहे हैं। दिल्ली में अप्रैल 1934 के एक दिन साहित्यिक सम्मेलन है। प्रेमचंद को कथा गोष्ठी का सभापति बनाया गया है। अब तक वे अपनी कीर्ति के शिखर पर पहुंच चुके हैं पर सम्मेलन के आयोजकों से अपने लिए कोई विशेष मांग नहीं करते। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार के शब्दों में, वे आए और बाकी सब लोगों की तरह उन्हें भी ठहरा दिया गया, यानी बड़े से एक हॉल में बीसियों और लोगों के साथ उन्हें भी एक खाट दे दी गई, अस्पताल के एक साधारण जनरल वार्ड के समान। पर प्रेमचंद को कोई शिकायत नहीं है, यही सर्वोत्तम है। खाने के समय वे कैंटीन में जाकर अपने लिए खाना मंगाते हैं। ड्यूटी पर तैनात स्वयं सेवक उनसे खाने का टिकट मांगता है।
टिकट? कैसा टिकट? कहाँ मिलता है?
वहां से खिड़की पर, अगर आप खरीदना चाहें, वरना दफ्तर से, स्वयं सेवक सीधा साधा जवाब दे देता है। वो नहीं जानता कि वो किससे बात कर रहा है। प्रेमचंद चुपचाप उस खिड़की पर जाकर टिकट खरीद लेते हैं और लाइन में खड़े हो जाते हैं। यही सादगी उस आदमी के चरित्र की बुनियादी चीज है। अब दृश्य बदलता है। ये लाहौर है 1935। प्रख्यात उर्दू नाटककार इम्तियाज अली ताज ने उनको चाय पर बुलाया है। ठीक है, पहुंच जाऊंगा, प्रेमचंद उनसे कहते हैं, मगर उससे पहले उन्हें और भी बहुत कुछ करना है। और दिन भर लाहौर की सड़कों और गलियों की खाक छानने के बाद जब वे शाम को ताज साहब के घर पहुंचते हैं, दिन भर की धूल धक्कड़ खाए हुए अपने मटमैले से मोटे गाढ़े कुर्ते और घुटनों तक पहुंचने वाली उटंग धोती में, तो देखते हैं कि वहां एक से एक 100 से ऊपर शानदार मोटर गाड़ियां खड़ी हैं। ताज साहब ने शहर के तमाम बड़े बड़े लोगों को बुला रखा था। जज, बैरिस्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर सभी तो मौजूद थे। और उन्होंने जो प्रेमचंद को देखा तो उनमें से बहुतों को, जो इस आदमी प्रेमचंद को ठीक से नहीं जानते थे, काफी कुछ समय लगा ये समझने में कि ये नीरा ठेठ देहाती आदमी ही वो प्रेमचंद है जिसके सम्मान में ये सब आयोजन हो रहा है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और उन सबसे एक ही बात का पता चलता है, उस आदमी की सादगी का, सरलता का। उसके पास बनावट नाम की चीज नहीं है, वो जैसा है वैसा है। अगर दुनिया में कोई एक चीज है जिससे उस आदमी को घृणा है तो वो है झूठी शान।